ग्यारहवां अध्याय वैदिक युग का आर्थिक जीवन। पहला, खेती और पशुपालन। खेती। वैदिक युग के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार कृषि और पशुपालन थे। इस समय तक आर्य लोग अस्थायी रूप से ग्रामों और नगरों में बस गए थे और उन्होंने कृषि, पशुपालन तथा विविध प्रकार के शिल्पों द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना प्रारंभ कर दिया था। खेती का उनकी दृष्टि से में बहुत महत्व था। ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि कवस एलुस ने द्यूत कर्म की निंदा करते हुए कहा है, पासों का खेल मत खेलो, खेती करो, जो वित्त उससे प्राप्त हो उसे ही बहुत मानकर भोग करो। खेती को अपने आर्थिक जीवन का आधार मानने के कारण वैदिक आर्य पृथ्वी को माता की दृष्टि से देखते थे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। वेद मंत्रों में उन अन्नों का भी उल्लेख मिलता है जिनकी खेती इस युग में की जाती थी। ऋग्वेद में केवल धान और यज्ञ का उल्लेख है। यज्ञ से जो अभिप्रेत है और धान या धान्य से चावल पर अन्नों का उल्लेख न होने से यह परिणाम भी पूर्ण विश्वास के साथ नहीं निकाला जा सकता कि ऋग्वेद के समय में आर्यों को कोई अन्न ज्ञात नहीं था। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद में तैयार हुई फसल को काटने, उसके पूले बनाने, खलिहान में पूलों को ले जाकर उनसे अनाज को पृथक करने और फिर उसे नाप कर अस्थिवियों में संचित करने का उल्लेख है। जब खेती इतनी विकसित दशा में हो तो यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा कि ऋग्वेद के युग में आर्यों को अन्य भी अनेक अनों का ज्ञान होगा और वे उनकी भी खेती किया करते होंगे। यजुर्वेद के एक मंत्र में निम्नलिखित अन्नों के नाम दिए गए हैं, ब्रीही अर्थात धान, यब अर्थात जौ, मांस अर्थात उड़द, तिल, मुदग अर्थात मूंग, खल्लब पता नहीं, प्रियंगु, अन्नु, श्यामक अर्थात सवाई, निवार, गोधूम अर्थात गेहूं और मसूर। अथर्ववेद में ब्रीही, मांस, यब और तिल का उल्लेख है। अन्नों व दालों के अतिरिक्त कतिपय अन्न कृषिजन्य पदार्थों का भी वैदिक युग के आर्यों को ज्ञान था। इनमें इच्छु अर्थात ईख उल्लेखनीय है। अथर्ववेद में इच्छु का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों तथा अरण्यकों में भी अनेक अन्नों तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थों के नाम आए हैं। कृषि द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले इतने पदार्थों का वर्णन इस बात में कोई संदेह नहीं रहने देता कि वैदिक युग में खेती अच्छी उन्नत दशा को प्राप्त कर चुकी थी। यही कारण है जो वेदों में फसल बोने और काटने आदि के संबंध में अनेक निर्देश विद्यमान है। उस समय जमीन को जोतने के लिए हलों का प्रयोग किया जाता था और उन्हें चलाने के लिए बैल जोते जाते थे। वेदों में हल के लिए लांगल और ब्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद में हल के लिए सिर शब्द का प्रयोग मिलता है। हल का जुआ बैलों की जोड़ी पर रखा जाता था, यद्यपि साधारणतया हल चलाने के लिए दो बैल प्रयोग में लाए जाते थे, पर ऐसे भारी हल भी होते थे जिन्हें खींचने के लिए 6-8 या और भी अधिक बैल जोते जाया करते थे। जमीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए खेतों में खाद भी डाला जाता था जो गोबर करीस का होता था। खेतों की सिंचाई भी की जाती थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में जल के दो प्रकार कहे गए हैं, खिनी त्रिमा और स्वयंजा। खिनी त्रिमा वह जल होता था जिसे खोदकर प्राप्त किया जाए, जैसे कुएं का जल, नदी, नालों, सोतों, वर्षा आदि के जल को स्वयंजा कहते थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में कूपों का उल्लेख मिलता है, ऐसे कूपों का भी जिनका जल अच्छित अर्थात कभी समाप्त न होने वाला होता था। ऋग्वेद में ऐसे संकेत भी विद्यमान हैं जिनमें रश्मि और डोल से और रस्सी और डोल से और रहट द्वारा कुओं से पानी निकाला जाना सूचित होता है। खेतों की सिंचाई के लिए कुओं का जल भी प्रयुक्त किया जाता था, जिसके लिए नालियां सुसिरा बनाई जाती थी। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा दी गई थी। अथर्ववेद में लिखा है कि पृथ्वी वैन्य ने सबसे पहले खेती करना और खेती द्वारा शस्य उत्पन्न करना प्रारंभ किया था। अश्विनों से शिक्षा प्राप्त कर आर्यों ने जब एक बार खेती करना शुरू किया तो उसमें निरंतर उन्नति होती गई। हल से खेत को जोतकर उसमें बीज बोए जाने लगे, पौधों की सिंचाई की जाने लगी और फसल के तैयार हो जाने पर उसे दात्र अर्थात दराती से काटकर परसों अर्थात पुलियों में बांधकर खल अर्थात खलिहान में ले जाया जाने लगा। आज भी भारत में खेती का प्रायः यही ढंग है। शतपथ ब्राह्मण में खेती की विविध प्रक्रियाओं के लिए कर्षण अर्थात जुताई, बप्पन अर्थात बुआई, लुंडन अर्थात कटाई और मिन्नन अर्थात मंडाई शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब अन्न भूसे से अलग हो जाता था तो तितऊ अर्थात छननी या सूप से उसे छान लिया जाता था। फिर उर्दर अर्थात वह पात्र जिससे अनाज नापा जाए से उसे नाप कर सुरक्षा के लिए स्थिवी अर्थात अनाज जमा करने का कोठा में रख दिया जाता था। वैदिक युग के आर्यों का आर्थिक जीवन पर कृषि वैदिक युग के आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर निर्भर था। अतः उन्होंने क्षेत्रपति नाम से एक ऐसे देवता की भी कल्पना कर ली थी जिसकी कृपा से उनके खेत फलते फूलते थे और जिससे वे यह प्रार्थना किया करते थे कि उनके खेत सुफल बने और उनसे उसी प्रकार धन्य धान्य का प्रवाह बहता रहे जैसे कि गौ से दूध की धाराएं बहती है। क्षेत्रपति देवता की स्तुति में ऋग्वेद में अनेक मंत्र विद्यमान हैं जिनका ऋषि वामदेव हैं। वामदेव द्वारा विरचित इस सूक्त में प्रार्थना की गई है कि हमारे फाल अर्थात फल का नुकीला भाग सुखपूर्वक खेत का कर्षण किया करे, किनीसा अर्थात हलवाहे सुखपूर्वक हल चलाया करे और पर्जन्य अर्थात बादल मधु के समान जल द्वारा हमें सुख पहुँचाए। पशुपालन खेती के साथ पशुपालन का घनिष्ठ संबंध है। वैदिक युग के आर्य जहाँ खेती के लिए पशु पालते थे वहाँ साथ ही दूध घी की प्राप्ति और सवारी आदि के लिए भी विविध पालतू पशुओं को पालन किया करते थे। पालतू पशुओं में बैल और गाय प्रधान थे। हल चलाने के अतिरिक्त रथों को खींचने के लिए भी बैलों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में सारथी केसी द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे वाहन का वर्णन है जिसमें रिशम जुता हुआ था। गाय का उपयोग दूध और घी के लिए था। गौ के घी दूध को आर्य लोग बहुत उपयोगी व स्वास्थ्यप्रद मानते थे, इसीलिए वे उसे माता या अघन्या अर्थात जिसकी हत्या न की जा सके समझते थे। ऋग्वेद में एक मुक्त है जिसकी देवता गाबा है। इसमें ऋषि बृहस्पत्य भरद्वाज द्वारा गौ के महत्व का अत्यंत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। ऋषि का कथन है कि गौवें सब भग ऐश्वर्य का मूल है। मेरे लिए गौवें ही इंद्र हैं। गौओं का दूध ही सोम रस का पहला भक्ष अर्थात घूंट है। ये जो गौवें हैं हे मनुष्यों वे इंद्र की साक्षात रूप में है। मैं हृदय से और मन से इन्हीं इंद्र रूपी गौओं को चाहता हूँ। हे गौओं तुम कृष्ण निर्बल व्यक्ति को बलवान बना देती हो और श्री विहीन व्यक्ति को सुप्रतीक अर्थात सुंदर व श्री सहित कर देती हो। तुम्हारी वाणी भद्र कल्याणकारी है। तुम द्वारा मेरा घर भद्र हो जाता है और सभाओं में तुम्हारे महत्व का बहुधा बखान किया जाता है। ऋग्वेद के एक अन्य सूक्त में ऋषि काचिवत सब्बल ने प्रार्थना की है कि संतान वाली गौवें दूध से हमें तृप्त करती हुई हमारे गोष्ठ अर्थात गौशाला में सदा प्रसन्नता पूर्वक रहे। जो आर्य लोग गांवों को इतना महत्व देते थे वे उन्हें बहुत बड़ी संख्या में पाला भी करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में चैद्य कसु के दान की प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि उसने 100 ऊंट और 10,000 गौवें दान में दी थी। कसु के लिए ऐसा कर सकना तभी संभव था जबकि गौवों के लिए गौवों को बहुत बड़ी संख्या में पाला जाता हो। वेदों में अन्यत्र भी बड़ी संख्या में गौवों को के दान दिए जाने का उल्लेख है। यद्यपि गौवें अनेक रंगों की होती थी और रोहित लाल, शुक्र अर्थात श्वेत, कृष्ण अर्थात काला, पुष्यन अर्थात चितकबरी होने के कारण उनकी पहचान कर सकना कठिन नहीं था, पर क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती थी अतः पहचान के लिए उनके कानों पर अनेक प्रकार के चिन्ह भी लगवा दिए जाते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में सहस्त्र अष्टकर्ण्य गौवों को दान में देने का उल्लेख है। जिन गौवों के कान पर 8 अंक का चिन्ह बना दिया गया हो उन्हें अष्टकर्ण्य कहते थे। कानों पर दात्र, दराती, अस्थूल, अस्थून, खंबा आदि के चिन्ह भी पहचान के लिए बना दिए जाते थे। वैदिक युग के आर्यों के आर्थिक जीवन में गौवों को इतना महत्वपूर्ण स्थान था कि विनिमय के लिए भी गौ को मूल्य का निर्देशन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि वामदेव पूछते हैं कि वह कौन है जो मेरे इंद्र अर्थात इंद्र की प्रतिमा को 10 गौवों के बदले में खरीद रहा है।